بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. حب جاه اور اس کا علاج، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ کون سی جاہ مزیر ہے، تو اس کے بارے بات چل رہی تھی، ادھوری رہ گئی تھی. وہ جاہ مزیر ہے جو انسان اپنی طلب اور اپنی کوشش سے حاصل کرے. مثلا وہ ایک کوشش کرے کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں منصب مل جائے، میری شہرت ہو جائے، باقاعدہ اہتمام اور کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے میں لگ جائے، تب تو یہ مزیر ہے. لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب کے بغیر بیٹھے بٹھائے کوئی جاہ عطا فرما دی، تو پھر یہ مزیر نہیں ہے. جی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھا، اس زمانے میں منطق کی ایک دقیق کتاب، منطق رسالہ میر زاہد، ایک استاد کے سپرد ہوئی، یعنی پڑھاتے تھے. وہ استاد سیدھے سادے تھے اور طلبہ کی جماعت شریف قسم کی تھی. بعض شریف قسم کے طالب علم ہوتے ہیں جو استاد کو پریشان کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ہے نا، خاص کر اگر استاد بھی سیدھا سادہ مل جائے تو اور زیادہ ان کے دماغ پر چڑھ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان طلبہ نے استاد کو چکر دے دیا، طلبہ نے استاد کو چکر دے دیا اور پریشان کر دیا. ان استاد نے درخواست دی کہ یہ طلبہ میرے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، مجھے کوئی اور سبق دے دیا جائے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، علامہ انور شاہ کشمیری، یہ استاد گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند میں. ان کا حافظہ کیسا قوی تھا، بہت عجیب استاد تھے. ایک بات ایک مرتبہ پڑھ لیتے ان کو یاد ہو جاتی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مصر ایجپٹ کے کتب خانے میں گئے، ان کو ایک کتاب ملی جو بالکل کہیں بھی نہیں تھی، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں تھی، پتہ نہیں کس فن کے اندر تھی. تو انہوں نے ان سے اجازت لی کہ یہ مجھے دے دو، میں بعد میں واپس بھیجوا دوں گا آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں کی لائبریری میں گئے تھے تو کہا یہی پڑھ سکتے، باہر نہیں لے جا سکتے. تو انہوں نے کیا کیا، اسی کتاب کو پوری کی پوری وہاں پڑھ لی، ہندوستان میں آ کر پوری کی پوری کتاب لکھ دی، اور لکھنے کے بعد پھر وہاں بھیجی، کہا جاؤ اس کو دیکھو تمہاری وہ کتاب اور یہ کتاب میں کوئی فرق ہے. تو بالکل کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا، سبحان اللہ. ان کو کہتے تھے چلتا پھرتا کتب خانہ، ایسا ان کا حافظہ تھا، عجیب تھا. تو یہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، بڑے استاد تھے. اس قسم کے معاملات انہی کے پاس جایا کرتے تھے. جب ان کے پاس درخواست پہنچی تو انہوں نے اساتذہ کی مجلس بلائی، تمام استادہ کو بلایا اساتذہ کو، اور اس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ یہ کتاب رسالہ میر زاہد کون پڑھائے، طلبہ کی جماعت بھی بڑی شریف قسم کی ہے اور سوالات بھی بہت کرتے ہیں، لہذا ایسا استاد ہونا چاہیے جو ان کو قابو کر سکے. چونکہ پہلے استاد نے پڑھانے سے معذرت کر لی تھی، اس لیے اس کا اثر دوسرے استادوں پر بھی پڑا، کوئی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھا. آخر کا حضرت شاہ صاحب نے، کشمیری صاحب، علامہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ، ان کو شاہ صاحب، حضرت شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی شفیع تم یہ کتاب پڑھا لوں گے؟ میں نے عرض کیا حضرت بات یہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے میری اہلیت پوچھتے ہیں تو میں تو میزان السر پڑھانے کا بھی اہل نہیں ہوں، یعنی کتاب ہے وہاں، اور اگر آپ پڑھانے کے لیے دے دے تو بخاری شریف بھی دے دے، پڑھا لوں گا، ویسے اہل تو نہیں ہوں. یعنی جب آپ اپنی طرف سے دے دیں گے اور دعا بھی کریں گے تو میں وہ بھی پڑھا دوں گا. کیا عجیب جواب دیا حضرت شاہ صاحب نے، فرمایا کہ بس تم یہ پڑھاؤ. देखो कैसा अदब के साथ में। तो बहरहाल हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो बात फरमाई कि अपनी जात में देखो तो मैं कुछ अहलियत नहीं रखता, अपनी जात में देखो तो मैं कुछ अहलियत नहीं रखता, लेकिन जब कोई काम बड़ों ने सुपुर्द कर दिया तो वो मिन जानी बिल्ला है। जी कोई काम दिया जाए तो फिर अल्लाह ताला उसको पूरा कराएगा, कोई भी काम हो, कभी खिदमत का काम होता है, कभी कहीं से लाने का होता है, कभी किसी से बात करने का होता है, कुछ भी काम हो, जब मिन जाने बिल्ला है तो उस वक्त मैं अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखता हूं कि जब वो काम बड़ों की तरफ से सुपुर्द होगा तो अल्लाह ताला उसमें तौफीक अता फरमाएंगे। हाँ आज लोग कहते हैं बड़ों की तरफ से जब कोई बात आती है कहते नहीं 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 ये तो मैं कर ही नहीं सकता और ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरे तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अरे अपने आप को तो ऐसा ही समझे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन जब बड़े दे रहे हैं तो बस उनसे दुआ करा लो कि आप दे रहे हैं उसका मतलब आपकी दुआ से काम हो जाएगा, अल्लाह ही कराएंगे। तो ये अगर बिगड़ भी गया तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं, उसमें भी फायदा है, क्योंकि बात मान ली, और अगर अच्छा हो गया तो उसमें डबल फायदा। हाँ तो इसलिए आइंदा याद रखे, बड़ों की तरफ से जब कोई काम मिले तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए, और अल्लाह मदद भी फरमाएंगे, लिहाजा अल्लाह ताला के भरोसे पर वो काम कर लो। अब जो काम वो करेगा उसमें न तो अपनी अहलियत का खन्नास दिमाग में होगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से नहीं लिया है, तो उसके अंदर कोई तकब्बुर भी नहीं आएगा, और न वो काम हुब्बे जा के तहत होगा, न उसमें तकब्बुर होगा, न उसमें उजब होगा, न रियाकारी होगी। क्यों? ये तो बल्कि डरते डरते करेगा, पता नहीं बिगड़ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, तो वो पूछ पूछ कर डरते डरते और अल्लाह से मांगते मांगते करेगा कि अल्लाह मुझे तो आता नहीं। जी चीज यके बे तलब रसद रसद आदाद ए खुदास आरा तू रद मकुन के फरिश्ता द ए खुदास, यानी जो चीज बगैर तलब के मिल जाए वो अल्लाह ताला की अता है। चीज यके बेतलब रुस्द आदाद ए खुदास, अल्लाह ताला की तरफ से, उसको रद्द मत करो क्योंकि वो अल्लाह ताला की भेजी हुई है। बहरहाल ऐसी जा जो बगैर तलब के मिल जाए वो न मजमूम है न मुजीर है, न मजमूम है न मुजीर। जितने औलियाई किराम और सूफियाई किराम हैं, उलमाई दीन हैं, बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, ये सब साहिबे जाह थे। जितने साहिबे जाह थे यानी मखलूक उन पर मरती थी, शोहरत भी हासिल थी, लोग इज्जत करते थे, हाथ पांव चूमते थे, गोया कि उनको ऐसी जाह अल्लाह ताला ने ता फरमाई थी जो बादशाहों को भी हासिल नहीं थी। लेकिन वो मुजिन नहीं, जहां तो थी ना, एक मकाम था। लोग इस शोहरत को हासिल करने के लिए पता नहीं कितना माल खर्च करते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको दे दी थी, तो इनके अंदर कुछ नहीं, तवाजु था, कोई किब्र नहीं। उस जहां में किब्र आता है, इस जहां में तवाजु है। एक अंग्रेज ने हिंदुस्तान के हालात पर एक किताब लिखी है, एक अंग्रेज ने, उस किताब में उसने लिखा है कि हिंदुस्तान पर हाकिम कोई भी आ जाए, हिंदुस्तान पर हाकिम कोई भी आ जाए, लेकिन असल हुकूमत यहां एक ही शख्स करता है। हाकिम तो कोई भी आ जाए, असल हुकूमत यहां एक शख्स करता है, और वो कौन है? वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो अजमेर शरीफ, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, यानी असल हुकूमत जो इंसानों के दिलों पर है वो उनकी है। जी बहरहाल ये जाह जो अल्लाह ताला ने औलियाए किराम को, बुजुर्गाने दीन को, उलमाए दीन को अता फरमाई है, जी दीन को अता फरमाई, ये ऐसी जाह है जो बड़े बड़े शहंशाहों को नसीब नहीं, ये वो जाह है जो बड़े बड़े बादशाहों को भी नसीब नहीं है। न उनको ऐसी जाह मिल सकती है, इसलिए कि बादशाह तो सिर्फ अपने जमाने के कर्रो फर का मुजाहरा कर लेगा, लेकिन दिलों पर हुकूमत यही लोग करते हैं। बादशाहों को भी जो अल्लाह वालों को जाह मिलती है, बादशाहों को भी नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह वाले दिलों पर हुकूमत करते हैं और बादशाह जिस्मों पर हुकूमत करता है। बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाले बुजुर्ग, बांग्लादेश के शहर सिलहट, सिलहट एक शहर है उनका, सिलहट में एक बुजुर्ग का मजार है जिसको दरगाह शरीफ कहते हैं। अब उस मोहल्ले का नाम भी दरगाह है और वहां की मस्जिद का नाम भी दरगाह है। उनका नाम हजरत शाह जलाल साहब मुजर्रद यमनी रहमतुल्ला अलैह था। जलाल बड़े दर्जे के अवलिया अल्लाह में से थे और ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्ला अलैह के हम असर थे, उनके जमाने में थे। कहा जाता है कि सिलहट को फतह करने वाले भी असल में यही बुजुर्ग थे। यमन के रहने वाले थे, मुजर्रद थे यानी शादी नहीं की थी। यमन से हिजरत करके जिहाद के लिए आए और यहां पर आकर जिहाद किया। अब ये हाल है कि सारे बंगाल के लोगों को जो अकीदत और मोहब्बत और अजमत हजरत शाह जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह से है, वो दुनिया में किसी से हो ही नहीं सकती। जी अब देखो वहां पर भी एक बुजुर्ग है जो हुकूमत कर रहे दिलों पर। एक मर्तबा शबे बारात के मौका पर, यानी 15वीं शाबान के मौका पर, मैं वहां था। उनके मजार पर हाजिर होने वालों का यह आलम था कि कितने किलोमीटर, मीलों तक तल धरने की जगह नहीं थी, पांव रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे उस शबे बारात के अंदर। बस आए थे, अब वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आखिर इनके दिलों में इनकी मोहब्बत है कि नहीं है, वो है। वो काम क्या कर रहे हैं वो और बात है, ये मोहब्बत बताना था कि कितने लोग थे जिनके दिलों में इतनी मोहब्बत थी कि वो आते थे। बहरहाल ये अवलिया अल्लाह दिलों पर हुकूमत करते हैं, लिहाजा उनसे बड़ी जाह दुनिया में किसी और को हासिल ही नहीं हो सकती। लेकिन वो जाह चूंकि अल्लाह तबारक वाला की तरफ से बगैर तलब के मिलती है, इसलिए न सिर्फ ये कि वो मुजिर नहीं बल्कि वो जाह ममद और मुआविन बन जाती है, यानी अच्छी और मददगार बनती है। उसके जरिए दीन का कलिमा आगे फैलता है, इसके जरिए लोगों की इसलाह होती है, इसके जरिए फैज फैलता है। लिहाजा अपनी तरफ से शोहरत की तलब न करे और न अपनी तरफ से उस फिक्र में न रहे कि मैं मशहूर हो जाऊं, मुझे कुर्सी मिल जाए। अपनी तरफ से ना हो, कोई पकड़ के बना दे तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, न बनाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जिसको कहते हैं जब नफ्स अंदर का मर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हैं। जी तो शोहरत से अपने को बचाओ, शोहरत से अपनों को बचाओ। काम हम करें, नाम दूसरों का दो। अल्लाह वाले ही करते हैं, काम वो करते हैं और नाम का उनकी उनकी वजह से हुआ, उनकी तरफ से हुआ, उन्होंने हाथ किया, उन्होंने ये किया, तो ना काम हम करें नाम दूसरों का हो। बल्कि हर शख्स शोहरत से बचे, शोहरत से बचे, और हक कुल इम्कान अपने आप को शोहरत से बचाने की कोशिश करे। क्या करे? अपने आप को शोहरत से बचाने की कोशिश करे, खुश ना हो जाए बल्कि काम करके अपने आप को बचाना भी है। और फिर भी अगर मशहूर हो जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से, उस पर कोई टेंशन नहीं। इसी वजह से हदीस शरीफ में हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में शोहरत का लिबास पहनेगा तो अल्लाह ताला आखिरत में उसको जिल्लत का लिबास पहनाएंगे। जी दुनिया में शोहरत का लिबास पहनेगा तो आखिरत में जिल्लत का लिबास पहनाएंगे। शोहरत का लिबास पहनने का मतलब यह है कि कोशिश करके अपने लिए शोहरत हासिल कर रहा है, याद रखो, कोशिश करके। बगैर कोशिश के मिल जाए तो यह शोहरत مضر نہیں. اور شہرت انسان کو پریشان کر دیتی ہے. اگر آدمی غور کرے اس کو پتا چلے کہ شہرت کوئی طلب کرنے کی چیز نہیں بلکہ یہ تو آدمی کو پریشان کر دیتی ہے. کیونکہ جب آدمی کو شہرت ہو جاتی ہے نا تو ہر وقت اس کا دماغ کسی نہ کسی دھندے میں مشغول رہتا ہے. جب شہرت ہو جاتی ہے اس کا نام بن گیا تو کسی نہ کسی دھندے میں وہ رہی, ظاہر بات ہے کہ اور نام کو باقی کیسے رکھو, مشغول رہتا ہے. وہ آرام اور چین سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. کوئی شخص اس کے پاس کسی کام کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ اب شہرت ہوئی تو کوئی نہ کوئی آئے گا. اگر کسی کو سخاوت میں شہرت ہو گئی تو مانگنے والے آئیں گے, کوئی نہ کوئی اپنے کوئی اپنی بیماری کا عذر, کوئی پتہ نہیں کیا کیا سب لے کر آئیں گے. تو اب اس کو چین کہاں سے ملے گا؟ اور ایک آدمی ہے سخاوت کر رہا ہے لیکن مشہور نہیں ہے, وہ اپنے اپنے حساب سے کر رہا ہے, تو اس کا کوئی مطلب, تو اس کو کوئی پریشانی. کوئی کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے, ہر وقت ایک تانتا بندھا رہتا ہے. یعنی لوگ آتے رہتے ہیں, وہ اپنا کام نہیں کر سکتا. اور جو شخص مشہور نہیں ہے اس کے پاس کوئی نہیں آتا, وہ بالکل آزاد ہے, جو چاہے کرے. اللہ اکبر. تو اس لیے شہرت سے بچنا چاہیے. اور خدا کی طرف سے اگر شہرت ملی ہے تو پھر اللہ سنبھالے گا. جیسے اللہ والوں کو شہرت مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالتے بھی ہیں, پھر ان کی ایک پھونک پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے کام بنا دیتے ہیں, پھر ان کو مشغول نہیں ہونا پڑتا. میرے ایک دوست نے مجھے خط لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی حلقہ اثر ہو, یعنی میرے بھی کچھ ماننے والے ہو, میرے بھی مریدین ہو اور کچھ معتقدین ہو. ہاں ان کو, تو دوست نے خط لکھا. میں نے ان کو لکھا کہ تمہارے دل میں کیا بلا مول لینے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے, یعنی کیا مصیبت تم لے رہے ہو اپنے اوپر. یہ تو ایک بلا ہے, بلا اس لیے کہ جب تمہارا حلقہ اثر ہوگا, یعنی تمہارا ایک گروپ ہوگا, تو پھر تمہیں نہ دن میں چین ملے گا نہ رات میں. یہ کوئی طلب کرنے کی چیز نہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی بغیر طلب کے عطا فرما دے تو اس کو حق سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرو, باقی اس کو خود سے مانگنا ایسا ہے جیسے خواہش کرنا کہ آ بیل مجھے مار. آ بیل, بیل کہتے ہیں, بیل تو سمجھ گئے, آ بیل مجھے مار, مطلب یہ ہے کہ تو بیل کو دعوت دے رہا ہے کہ تو آ کر مجھے سنگ مار. یہ شہرت طلب کرنا, لوگوں کے اندر نام ہونے کو طلب کرنے کی حقیقت تو یہ ہے. جی اللہ اکبر. اللہ مجھ سے پوچھو کہ نہ صبح چین, نہ شام چین اور نہ رات میں چین, حالانکہ حلقے احباب زیادہ نہیں ہیں, لیکن جتنے تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں نا, ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آتے رہتے ہیں. یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات تو فرماتے ہیں, مجھ سے پوچھو, کیونکہ وہ مشہور ہو گئے نا ساری دنیا میں. تو بولے نہ صبح میں چین ہے, نہ شام میں چین ہے, رات میں چین ہے. کیوں؟ حالانکہ کہتے ہیں کہ میرے زیادہ مریدین یا ماننے والے نہیں, لیکن جتنے تھوڑے ہیں نا, یعنی ہے بہت, یہ توازن کہتے ہیں تھوڑا سا, ورنہ ساری دنیا کے لوگ ان کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں, اور ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آتے رہتے ہیں. ایک طرف تو لوگوں کے آنے سے ہر وقت مشغولی تو رہتی ہے, مزید یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنا ذاتی اور اپنا نجی یعنی پرائیویٹ مسئلہ لے کر آتا ہے. یہ تو عمومی مشغولی, پھر پرائیویٹ لوگ لے کر آتے ہیں اور آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ کس کس مصیبت میں گرفتار ہے. ان کی باتیں سن کر طبیعت پر بڑا اثر ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ اس مصیبت میں ہے, یہ فلاں پریشانی میں ہے, جس کے نتیجے میں ہر وقت دل پر کوئی نہ کوئی چوٹ لگی رہتی ہے. ظاہر بات ہے کوئی اپنا دکھڑا سناتے ہیں نا, دکھ سنائیں گے لوگ. اب دکھ سنائیں گے تو ہمیں بھی دکھ ہوگا, تو وہ چوٹ لگے گی دل کو, ابھی دعا کریں گے ان کے لیے. تو یہ ہوتا ہے, اب لوگ آتے ہیں, اب جس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. جی اور جو آدمی गोशा नशीन है, कोने में बैठ गया घर के, न उसको कोई जानता है, न उसके पास कोई आता है, बस तन्हाई में अपने अल्लाह से लो लगाए बैठा है, उसी में मस्त है, उस जिंदगी का क्या कहना। लिहाजा ये शोहरत कोई तलब करने की चीज नहीं। तो वो मांग रहे कि वो बड़े मजे में है। अरे अल्लाह जिसको जिस हाल में रखे वो मजे में है। ये मुफ्ती साहब, मुफ्ती तकी साहब को अल्लाह ताला ने रखा है, और वाकईतन अल्लाह ताला ने ये पूरे आलम के और तमाम उलमा के मकबूल आलिम है जी। तमाम दुनिया के उलमा, अरब और अजम, सभी मानते हैं। और वैसे है बहुत सीधे साधे और सिंपल, अगर हमारे पास आ जाए तो शायद कोई उनको सलाम भी न करे, ऐसे सीधे साधे दिखते। लेकिन जब बात करे तो उलमा हैरान हो जाते हैं, और जब कोई मसला बता दे तो लोग हैरान हो जाते हैं। हाँ, और उन्हीं की किताब पढ़ रहे हैं, देखो कैसी उन्होंने तफसीर और तशरीह की है, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की, ये उन्हीं की किताब पढ़ रहे हैं जी। हाँ, अगर अल्लाह ताला अपनी तरफ से अता फरमा दे तो फिर उसका हक अदा करो, फिर उस पर इतराओ नहीं, यानी अकड़ मत करो कि मैं इतना मशहूर हो गया हूं, मेरी तरफ इतने आदमियों का रुजू है, बल्कि उसका हक अदा करो, और ये सोचो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने लोगों की खिदमत अता फरमा दी, इतने लोगों का खादिम बना दिया, लिहाजा इस खिदमत का हक अदा करो। और हमारे हजरत पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहम, वो भी कितने मशहूर है और हर वक्त मशगूल है, उनके पास भी हर वक्त लोग आते रहते हैं, और वाकई फायदा पहुंच रहा है, तो अल्लाह ने उनको मशहूर कर दिया। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे, फरमाते थे कि दुनिया के जितने मनासिब है, यानी जितने ओहदे हैं, कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां समझो ओहदों को, मनासिब, इन सब का ये हाल है कि अव्वल तो उनको हासिल करना अपने इख्तियार में नहीं, अव्वल तो उनको हासिल करना अपने इख्तियार में नहीं, जितने मनसब है, और अगर बिलफर्ज कोई मनसब मिल जाए तो सैकड़ों लोग उस पर हसद करने वाले पैदा हो जाएंगे। अगर कोई ओहदा हमें मिल भी गया तो अब बता उसमें हासिदीन कितने होंगे, उसकी तो खैर नहीं। तो बहुत सारे हसद पैदा करने वाले, हसद करने वाले पैदा हो जाएंगे, और तुम्हें उस मनसब से हटाने की फिक्र करेंगे। मसलन तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, ठीक है, अब वजीर आजम बनना तुम्हारे इख्तियार में नहीं, बल्कि दूसरे मुलाजमतों में, दूसरी मुलाजिमत में ये होता है कि तकरीर करने वाली अथॉरिटी और शख्सियत एक होती है। अब अगर उसकी खुशामद कर लोगे या उसको रिश्वत देकर खुश कर लोगे तो वो तुम्हें इस मनसब पर फाइज कर देगा, यानी तुम भी तकरीर कर लो चलो, लेकिन वजीरे आजम का जो मनसब है वो कुर्सी है, ये ऐसा है कि उसका तकरीर करने वाला एक शख्स नहीं। वजीर आजम बनना हो तो एक आदमी नहीं बनाता, पब्लिक मिलकर बनाती है, एक शख्स नहीं बल्कि करोड़ों है। अब इन करोड़ों की खुशामद करो ताकि वो तुम्हें वोट दे, और हर एक को राजी करने की फिक्र करो। अब कहां तक तुम उनको राजी करते फिरोगे, इसलिए कि उनको राजी करना अपने इख्तियार में नहीं, और अगर बिलफर्ज तुम मशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करके किसी तरह वजीर आजम बन भी गए चलो, तो अब हजारों आदमी तुम्हारी टांग खींचने की फिक्र में रहेंगे। अब जाहिर बात है एक तो बड़ी मुश्किल से तो मिला, लेकिन अब हजारों आदमी टांग खींचने की फिक्र में रहेंगे कि किस तरह ये इस मनसब से उतर जाए, ये क्यों वजीर आजम बन गया, मुझे वजीर आजम बनना चाहिए था। लिहाजा हसद करने वाले बेशुमार लोग होंगे और उतारने वाले बेशुमार होंगे। मिल तो गई, अब वहां का संभालना ये भी आसान काम नहीं है, फिर एक मेहनत उसको संभालने की करनी पड़ती है कि कौन हासिदीन है, तो पूरी नजर रखनी पड़ती है। खुद वजीर आजम को इस बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं कब असेंबली में अदम एतिमाद की तहरीक पास हो जाए जाएगी, और मुझे वजीर आजम के मनसब से निकाल बाहर करेंगे। इसलिए वजीर आजम को हर वक्त असेंबली के मेंबरान को भी खुश रखने की फिक्र रहती है कि ये भी राजी रहे। लिहाजा जब तक तुम वजीर आजम हो, हसद करने वाले हसद करेंगे। दुनिया के जितने मनासिब है उन सब का ये हाल है। इसलिए बनना है आप लोगों को, जब ये पता चले कि इतने हासिद होते हैं, फिर इंसान बन के क्या करे, बोले उससे अच्छा है कि अपनी जगह पर। अरे हम छोटा मोटा जो काम करते हैं उसमें कितने हासिदीन होते हैं, बहुत होते हैं। जो भी काम करो, कंपनी खोलो, दुकान खोलो, मदरसा खोलो, हर जगह पर हासिदीन तुम्हें मिलेंगे। जी फिर फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा मनसब बताता हूं, डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा मनसब बताता हूं जिसको हासिल करना तुम्हारे इख्तियार में है, और जब वो मनसब हासिल हो जाए तो कोई शख्स तुमसे हसद नहीं करेगा, और कोई शख्स तुम्हें इस मनसब से उतारने की कोशिश भी नहीं करेगा। और वो मनसब क्या है बताओ, पहले भी बताया था मैंने और ये आ रहा है, फरमाया खादिमियत, खादिम बन जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई हसद नहीं करेगा, कि लिहाजा तुम खादिम बन जाओ। अल्लाह देखो, मखदूम बनोगे तो हासिदीन बनते हैं, लेकिन खादिम बनोगे तो कोई हसद नहीं। जी बोले ये कौन करेगा, क्योंकि इसमें मेहनत पड़ती, खिदमत करो। अब खिदमत में कई तरह की है, तो खादिम बन जाओगे तो उसमें कुछ नहीं। अब खादिम में काम करो तो भी खिदमत की नीयत से, खादिम ही होता है वो। अब एक आदमी है, दुकान खोली है, अब कम से कम अपना प्रॉफिट रखता है, अब बोले मैं लोगों की खिदमत कर, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मेरा खाली खर्चा जो ला रहा कर रहा, अब वो खादिम कर रहा है, उसका कोई हासिद नहीं होगा, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि बोले यार ये तो, क्योंकि अपनों को तो है ही नहीं कि मेरा माल, मैं तो खिदमत के लिए बैठा हूं, नहीं बिकेगा तो कोई गम नहीं, तो ये भी एक खिदमत है। और इंसान खिदमत खादिम बनेगा। अब लोगों की खिदमत कई तरह की है, तो हर खिदमत की नीयत कर ले। किसी के साथ जाना है तो बोले मैं खादिम बन के चलूंगा, जो खादिम बन के चलेंगे तो कोई नहीं, इसमें बड़ा बन के ना, बड़ा बनने की नीयत से मत जाओ। तो लोगों की खिदमत शुरू कर दो, कौन मेरा हाथ रोकेंगे, रोकेगा कोई नहीं, इस मनसब पर मुझसे कोई हसद नहीं करेगा। जी कि ये क्यों खादिम बन गया, अब किसी अल्लाह वाले के तुम खादिम बन जाओ तो आजकल तो उनकी खिदमत में भी हसद है, भाई ये क्यों बना, मुझे बनना था। हाँ ये क्यों बन गया, अल्लाह अकबर। वो इसलिए हसद होता है कि खादिम बनना वो भी बड़ा बनने के लिए होता है, क्यों, कि भाई मैं बड़े का खादिम बना तो वो भी बड़ा बन गया, तो उस वजह से हसद होता है। अगर खादिम वाकईतन खिदमत के लिए जा रहा है तो दूसरा है कि भाई तू आ जा, चल मैं हट जाता हूं, तू आ जा, तो देखो कोई हसद नहीं। दूसरे को बिठा दिया, क्योंकि वो देख लेगा कि खिदमत में क्या परेशानी होती है, वो भाग जाएगा, चला जाएगा, बोले यार ये खिदमत तू ही कर, बड़ा हमसे नहीं हो सकता। तो ये है कि जिसको कोई अपना वो नहीं चाहिए जा, तो वो तो हमेशा फौरन ही कहेगा अच्छा भाई तेरे को ये पसंद है, आ जा तू इधर खिदमत कर। तो इस मनसब पर मुझसे कोई हसद नहीं करे कि ये क्यों खादिम बन गया, इस मनसब से माजूर होने का भी अंदेशा नहीं। जब तक चाहो तुम उस मनसब पर बरकरार रहो, तुम्हारी मर्जी है, लिहाजा तुम्हारी अपनी मर्जी का मनसब है। तो हमेशा खादिम बनो, बड़ों के खादिम बन जाओ, जो काम कर रहा है उसकी खिदमत कर लो, जो काम कर रहा है उसके खादिम बनो। अब चाहे काम कोई दीनी काम कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई घर में है, तो उसके खादिम बनोगे तो कुछ भी नहीं। लिहाजा जब तुम्हें दुनिया का भी कोई मनसब हासिल हो, जब तुम्हें दुनिया का भी कोई मनसब हासिल हो, उसको भी यही समझो। देखो ये आई बात, कि उसको भी यही समझो कि मेरी खादिमियत का एक शोभा है, ये भी मैं खिदमत कर रहा हूं। इसीलिए कहते हैं ना, खादिमेन हरमेन शरीफन, खादिमुल हरमेन शरीफन उनका लकब है ना, सऊदिया का जो बादशाह होता है उनको क्या कहते हैं, हरमेन शरीफेन का खादिम, ये तो उनको लकब बना दिया। लेकिन हमें भी अगर कोई हमें कोई कुर्सी भी मिली, चलो कि मिसाल के तौर पर आपको जमात का अमीर बना दिया गया, कम्युनिटी का चेयरमैन बना दिया गया, तो वो बना दिया तो अब वो समझो कि मैं तो खादिम हूं कौम का। इसलिए आता है कि सैयदुल कौमी खादिमुहुम, कि कौम का सरदार वो पब्लिक का खादिम होता है। आज हमारे यहाँ कौम का सरदार फरमाए वो बड़ा होता है और पब्लिक खादिम होती है। नहीं, बड़ा खादिम होता है छोटों का। तो जो अगर खिदमत की ऐसी नीयत हो, अब चेयरमैन तो बना है लेकिन वो ये समझे कि मुझे खिदमत करनी है, तो उसमें गरीबों का देखना है, यतीमों को देखना है, बेवाओं को देखना है, कैसे इन लोगों में क्या परेशानी है। हजरत उमर रदी अल्लाह उन्होंने देखो खिदमत की नीयत से रातों में जाते थे, क्योंकि खादिम हमेशा ध्यान रखता है। तो अगर हमें कोई ओहदा भी मिले तो उसमें भी खिदमत की नीयत, कोई काम करो तो खिदमत की नीयत। तो ये है। तो बाकी अल्लाह ताला खर्चा तो खुद ब खुद देगा, रोजी तो अल्लाह ताला देने वाले हैं, लेकिन नीयत खिदमत की करने की वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई हासिद हसद करेगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, तो फरमाया खादिमियत का एक शोबा, जब तक ये मनसब मेरे पास रहेगा उसके वास्ते से खिदमत करता रहूंगा, और जब ये मनसब मुझसे छिन जाएगा तो दूसरे तरीके से खिदमत शुरू कर दूंगा। इस तरह ये मनसब कभी भी तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा। लिहाजा जब कोई मनसब मिल जाए तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सही मसरफ में उसको खर्च करने की कोशिश करो और सही मसरफ में उसको इस्तेमाल करो और अपने आप को खादिम समझते रहो। अब सवाल पैदा होता है कि हम जब कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग उस पर जरूर तारीफ करेंगे और इस तारीफ से खुशी भी होगी। इसलिए कि इंसान की फितरत है कि जब कोई दूसरा उसकी तारीफ करता है तो उस पर खुशी होती है, उसी का नाम हुब्बे जा है। लिहाजा कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसके नतीजे में हुब्बे जा पैदा होगी। ये सवाल है। इसका हल ये है कि इस काम से पहले अल्लाह ताला से वादा कर लो, इस काम से पहले अल्लाह ताला से वादा कर लो कि या अल्लाह मैं ये काम कर रहा हूं और इस काम पर लोग मेरी तारीफ करेंगे और इस तारीफ पर मेरा दिल भी खुश होगा, लेकिन हकीकत में तो ये तारीफ मेरी नहीं होगी बल्कि आपकी तारीफ होगी। अल्लाह ताला से वादा कर लो कि मेरी तारीफ नहीं होगी, ये आपकी तारीफ होगी, क्योंकि जो कुछ भी मैं काम करूंगा वो मेरे बस में नहीं बल्कि आपकी दी हुई तौफीक से होगा, और जब आपकी तौफीक से वो काम होगा तो वो तारीफ के लायक और सजावार भी आप ही है, मैं नहीं हूं। लिहाजा जो शख्स भी मेरी तारीफ करेगा हकीकत में वो आपकी तारीफ होगी। इसलिए या अल्लाह इस तारीफ को मेरे लिए फितना न बनाइए। तो ये है, तारीफ तो लोग करेंगे। मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से वाकया सुना कि एक बुजुर्ग थे, उनका ये मामूल था कि जब कोई शख्स उनकी तारीफ करता या कोई तारीफी जुमला कहता, मसलन कोई शख्स कहता हजरत आप बड़े आलिम हैं, तो उस तारीफ पर बहुत खुशी का इजहार करते और बहुत खुश होते और उसको शाबाशी देते, माशाल्लाह कि तुमने सही बात कही। या मसलन किसी ने उनके तकवे की तारीफ कर दी या उनकी सखावत की तारीफ कर दी तो उस पर बहुत खुश होते थे। किसी ने उन बुजुर्ग से कहा हजरत अगर किसी की तारीफ की जाए तो वो तो जरा शर्माता है, लेकिन आपका मामला अजीब है कि जब आपकी तारीफ की जाती है तो आप बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, उस पर उसको शाबाश देते हैं, उसकी पीठ थूकते हैं, ऐसा मालूम होता है कि आपको तारीफ कराने का शौक है। ये तो तारीफ पसंदी हुई जो ठीक नहीं है। तो जवाब में उन बुजुर्ग ने फरमाया कि ये तारीफ करने वाले बेवकूफ जो तारीफ करते हैं, ये तारीफ करने वाले बेवकूफ जो तारीफ करते हैं, ये हकीकत में मेरी तारीफ नहीं होती, वो अल्लाह ताला की तारीफ होती है। वो मेरी तारीफ नहीं होती, अल्लाह ताला की तारीफ होती है, और मैं अल्लाह ताला की तारीफ पर खुश होता हूं कि शख्स मेरे अल्लाह की तारीफ कर रहा है, और उस पर मैं उसको शाबाशी देता हूं, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं, मेरा वजूद ही क्या है, मेरी सलाहियत ही क्या है, मेरे अंदर तो कोई सिफत काबिले तारीफ नहीं है। फर्ज करो कि एक शख्स एक दीवार की तारीफ कर रहा है कि दीवार बड़ी शानदार है, तो बताओ ये तारीफ दीवार बनाने वाले की हुई, मैमार की हुई, या इस दीवार की हुई? बताओ, मैमार की हुई, बनाने वाले की। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी किताब की तारीफ कर रहा है कि किताब बहुत अच्छी है, तो हकीकत में किताब की तारीफ नहीं है, बल्कि इस किताब के लिखने वाले की तारीफ है, या उसके छपाने वाले की तारीफ है। इसी तरह जो कुछ मेरी तारीफ हो रही है, वो हकीकत में मेरी तारीफ नहीं, वो तो अल्लाह ताला की तारीफ है, इसलिए मैं अल्लाह ताला की तारीफ पर खुश होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कही, अल्लाह अकबर। हकीकत में तो अल्लाह की तारीफ हो रही। कुरान करीम इसी आयत से शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। इसका मतलब यह है कि कायनात में जिस चीज की भी तारीफ करोगे, हकीकत में वो अल्लाह ताला की तारीफ होगी। लिहाजा जब भी कोई शख्स तुम्हारी तारीफ करे, तो ये सोच लो कि अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से ये सिफत मुझे अता फरमाई है, लिहाजा हकीकत में ये तारीफ मेरी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की है। ये सोचने से हुब्बे जाह की बीमारी का इलाज होता है। दूसरी बात, ये इला हुब्बे जाह का इलाज बताया ना, एक तो ये समझो कि तारीफ मेरी नहीं अल्लाह की हो। दूसरा, दूसरी बात ये कि जब कोई शख्स तुम्हारी तारीफ करे, तो दिल में ही शुक्र अदा करो कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने शख्स पर मेरी अच्छाई जाहिर फरमा दी, जिसके नतीजे में शख्स मेरी तारीफ कर रहा है। अगर आप उस शख्स पर मेरे ऐब मुनकशिफ फरमा देते, खोल देते, तो ये शख्स मुझसे नफरत करता। ये अल्लाह आपका करम है कि आपने मेरे ऐब की पर्दापोशी फरमाई और उसके सामने अच्छाई जाहिर कर दी। बेशक तो ये केस सोचो, ये भी इसका इलाज है। एक साहब ने हजरत वाला को खत में लिखा, कमतरीन का मजाक यही है, कमतरीन का मजाक यही है कि गुमनाम रहूं। और हदीस में जो दुआ आई है, अल्लाह मजअलनी फी आईनी सगीरा व फी आयुनी नासी कबीरा, उसमें लोगों की नजर में बड़ा मालूम होने की दुआ का अम्र है, जिससे अंदेशा तरक्की लज्जत जाह का है, जो खिलाफे मजाक है। ये एक सवाल लिखा किसी साहब ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि एक साहब ने लिखा कि मेरी तबीयत तो ये चाहती है कि गुमनाम रहूं, कोई शोहरत न हो, लोग मुझे न पहचाने, क्योंकि शोहरत में हुब्बे जाह का अंदेशा हो जाता है। लेकिन उस साहब के दिल में एक शुबा पैदा हुआ, जो बहुत माकूल शुबा है और हर इंसान के दिल में पैदा हो सकता है, वो ये कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई है, उनमें एक दुआ ये भी है कि अल्लाह मुझे अपनी निगाह में तू छोटा बना दे, मुझे अपनी निगाह में तू छोटा बना दे, और दूसरों की निगाह में मुझे बड़ा बना दे। तो जहां तक अपनी निगाह में छोटा बनने का ताल्लुक है, वो बात तो समझ में आती है, इसलिए कि ये तवाजु है जिसकी दुआ की गई। लेकिन ये दुआ करना कि मैं दूसरों की, लोगों की निगाहों में बड़ा हो जाऊं, ये तो हुब्बे जा है। एक सवाल पैदा हुआ उनके दिल में, कुरान की इस आयत को सुनने के बाद एक शुबा पैदा हुआ और लिखा, तो इश्काल पैदा होता है कि इस दुआ में तो जाह की तलब हो गई, इस दुआ में तो जाह की तलब हो गई कि बड़ों, दूसरे लोगों की नजर में बड़ा बड़ा हो जाओ, कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि लोग मुझे बड़ा समझे, और लोगों के बड़ा समझने की तलब और ख्वाहिश का नाम ही तो हुब्बे जाह है। लिहाजा इस दुआ का क्या मतलब है? सवाल समझ गए? जब सवाल समझोगे तो फिर जवाब समझ में आएगा। हाँ, इस दुआ के अंदर जाहिर बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। अब एक सवाल पैदा होता है, तो जाह का जायज दर्जा वो समझे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में इरशाद फरमाया कि जाह के दो दर्जे हैं, जाह के दो दर्जे हैं, एक जायज और मतलूब है और दूसरा नाजायज। जाह का जो जायज दर्जा है उसकी तलब भी जायज है, तो यहां पर जो है ना वो उसकी तलब है। जाह का जायज दर्जा ये है कि इंसान की इतनी वक्त लोगों के दिले में हो, इंसान की इतनी वक्त लोगों के दिलों में हो जिसकी वजह से वो लोगों की ईजा रसानी से बच सके, लोगों की तकलीफ न दे उससे बच सके। क्योंकि अगर इंसान लोगों की नजर में बिल्कुल बेवकत हो जाए तो लोग उसको तकलीफ पहुंचाएंगे, जाहिर बात है। मसलन कोई उसका मजाक उड़ाएगा, कोई उसको थप्पड़ मारकर भाग जाएगा, कोई उसको गाली देगा, कोई उसको बुरा भला कह देगा। इसके बरखिलाफ अगर इंसान को थोड़ी बहुत वक्त हो तो उसके नतीजे में वो लोगों की इजा रसानी से बच सकता है। लिहाजा इस नुक्ते नजर से जाह का तलब करना कि मैं लोगों की इजा रसानी से महफूज हो जाऊं और कोई मेरे ऊपर बुरी निगाह न डाले और मेरे खिलाफ कोई बदख्वाही न करे, इस नुक्ते नजर से अगर कोई शख्स जाह तलब करे तो जायज है। एक लतीफा हमारे हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया करते थे कि एक मौलाना साहब थे, वो अपने इलाके में मारूफ और मशहूर थे, लोग उनकी इज्जत करते थे। एक मरतबा वो किसी देहात में चले गए और रात को गांव के नवाब की हवेली में कयाम किया। किसी गांव में चले गए और गए तो नवाब, नवाब जरा बड़े लोग गिने जाते थे, नवाब की हवेली में कयाम किया। उस हवेली में यानी उस घर में उनका बंगला जो होगा उसमें रात के वक्त चौकीदार घूमते रहते थे, चौकीदार घूमते रहते थे। रात को किसी वक्त कजाए हाजत के लिए कमरे से बाहर निकले, बैतुल खला जरा फासले पर था बाहर निकलकर, वहां जाने लगे। जब बैतुल खला के करीब पहुंचे तो चौकीदार ने उनको देखकर ये समझा कि कोई चोर आ गया, ये कोई चोर आ गया, चुनाचे फौरन डंडा लेकर वहां पहुंच गया और आवाज दी कि कौन है। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि हम हैं बड़े मौलाना साहब। क्या बताए? हम हैं बड़े मौलाना साहब। ये जवाब सुनकर चौकीदार रुक गया। बाद में मौलाना साहब ने बताया कि अगर मैं उस वक्त तवाजु से काम लेता, तवाजु से काम लेता तो ये डंडा उसी वक्त मेरे सर पर पड़ जाता था। बड़े मौलाना साहब कहकर अपनी जान बचाई। कौन है बड़े मौलाना साहब? तो बोले जान बच गई, वरना उस वक्त तो बोले गया मेरा तो सर ही फट जाता था। तो कभी कभी अपनी जान दिखानी पड़ती है ऐसे वक्त में। हाँ भाई कौन हो, काम ये है, फुला है फुला है फुला है। तो अब इस मौका पर जा का इजहार अपने आप को दूसरों की अजियत से बचाने के लिए था, इसलिए ये जा का इजहार जायज था। क्योंकि अगर इस मौका पर मौलाना साहब तवाजु का इजहार करते हुए कह देते कि मैं तो हकीर फकीर हूं तो बस वो डंडा उनके सर पर पड़ चुका था। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे अपनी निगाह में तो छोटा बनाइए लेकिन लोगों की निगाह में मुझे बड़ा बनाइए, उससे मकसूद लोगों की अजियत से, लोगों की तकलीफ से अपने आप को महफूज करना है। और इस मकसद के लिए जा का हुसूल बुरी बात नहीं है। चुनाचे हजरत वाला फरमाते हैं, जा खुद मकसूद नहीं बल्कि जरिया है दफे मुफसिदा का, और वो मुफसिदा अजियते खल्क है, इसका दाफे जा है कि वो माने होता है जालिमों की दस्त दराजी से। बहरहाल ये था हुब्बे जा के बारे में, बहुत तफसील से बात आ गई, बहुत बारीक बारीक बातें भी आ गई जो हमारे सवालों के जवाब भी इसमें हो गए। बहरहाल लोगों की अजियत से बचने के लिए अगर जा का हुसूल बुरी बात नहीं है, यानी अगर हमने कह दिया अपना तारुफ करा दिया आप कौन है तो हम ये है ये है ये है, ताकि सामने वाला ओ बोले तो बहुत बड़े है तो थोड़ा नरम पड़ जाए। हाँ वरना कहेंगे कि हाँ भाई हम तो एक आम आदमी है, तो वो समझेगा कि कोई आ गया है। तो बाज मरतबा अपने आप को दिखाना पड़ता है, लेकिन हमारे ये देखो ये दिल की बात है, अल्लाह ही जानता है कि तुमने ये जाह जो तुमने तलब की तो वो इस वजह से की है कि तुम नुकसान से बचो तो ठीक है। अब ये दिलों की बात जो है वो अल्लाह ही जानता है। अगर वाकईतन हमने इसके लिए की है तो कोई पकड़ नहीं, और अगर हमने दूसरे मकसद के लिए की है कि मैं बड़ा बनूं तो फिर उस पर पकड़ होगी। हम اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں.